श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपगोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गोविंद की जय। ओम ज्ञान प्रदस्य श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम लोग पुरुषोत्तम योग का चर्चा कर रहे थे, योग के बारे में चर्चा कर रहे थे, 15वां अध्याय भगवद गीता। अभी दैवी तथा अतुरी स्वभाव अध्याय क्रमांक 16। तो इस अध्याय में दैवी और असुरी स्वभाव का वर्णन किया है। जैसे हर एक व्यक्ति के उसके लक्षण से जाना जाता है, उनके गुण से जाना जाता है, कौन असुर है कौन सुर है या भक्त है, उनके गुणों के द्वारा समझा जाता है। जब हम लोग असुर कहते हैं, शायद ऐसे मन में आ सकता है कि उसका 10 सर हो या ऐसा सिंह हो या ऐसा कुछ क्या है दांत हो वैसे भी हो सकते हैं, वैसे भी थे, टेलीविजन में देखा होगा आप लोगों ने लेकिन असुर कोई भी हो सकते हैं। वो हम इस अध्याय में देख सकते हैं, देखेंगे। वो ओबामा भी हो सकते हैं, मोदी भी हो सकते हैं आपके माता पिता भी हो सकते हैं या आपके जो घर के बाजू वाले वो भी हो सकते, कोई सगे संबंधी कोई भी हो सकता है, या हमारे अंदर भी हो सकते हैं असुर के गुण तो इन गुणों का यहाँ पर वर्णन हो चुका है। ऐसे हमने सुना था और उसको आप समझ सकते हैं। सतयुग में लोग असुरों का लोक और सुरों का लोक अलग हो गए थे, और त्रेता युग में क्या हो गए, वो इसी लोक में आ गए, एक ही लोक में आ गए, लेकिन अलग अलग राज्य होता था उनका। जैसे श्रीलंका, लंका और अयोध्या अलग राज्य है ना, और द्वापर युग में वो एक ही परिवार में आ गए, दुर्योधना कंस सब वो एक ही परिवार में। और कलयुग में सबके अंदर असुरी गुण होते हैं, ये दोनों असुरी और दैवी गुणों के बीच में सर्वदा संघर्ष हो जाता है। तो यहाँ पर इन गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, 15वें अध्याय के आरंभ में हम लोगों ने देखा कि इस जगत को एक अश्वत्थ वृक्ष से तुलना किया गया। तो अश्वत्थ वृक्ष के निचले शाखाएं हैं, वो सभी रजतमोगुण से प्रभावित होते हैं, और ऊंचे शाखाएं क्या है सतोगुण से प्रभावित होते हैं। तो सतोगुण के प्रभाव में जाते हैं, वो ऊंचे लोक में सभी देवतागण रहते हैं, सुर रहते हैं, दैवी गुणों से युक्त लोग होते हैं। और निचले शाखाओं में जो जीव होते हैं वो रजतम गुण के प्रभाव में होने के कारण वो असुरी स्वभाव के होते हैं। और प्रभुपाद 9वें अध्याय तक भी जाते हैं। 9वें अध्याय में महात्मा और दुरात्मा का वर्णन हुआ है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तरमाश्रिता परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वरं। जो भगवान को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं और मोगाशामोग कर्माणो मोग ज्ञानाविचेषसा राक्षसीं आसुरीं चैव मोहिनीं प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। तो ये सभी दुरात्मा है, असुर है। और महात्माओं का वर्णन भी, महात्मा नाम पात्र दैवीं प्रकृति मनसो ज्ञावा ज्ञावा भूताधिम्व्ययम्। तो क्यों ये उल्लेख कर रहे शिल प्रभुपाद? दैवी प्रकृति, वहाँ पर शब्द आता है ना, महात्मा लोग दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। तो यहाँ पर दैवी और असुरी प्रकृति का वर्णन कर रहे, स्वभाव का वर्णन कर रहे। उसको पढ़ते हैं 15वें अध्याय के प्रारंभ में। इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाले अतिरिक्त जो जड़े जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा गया है, कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे वशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति का उसके गुणों एवं असुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप में वर्णन करते हैं। वे इन गुणों को गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। तो पहले दैवी प्रकृति के दैवी स्वभाव को वर्णन करते हैं और उसके गुणों को, विशेष करके पहले 6 श्लोकों में। अभयं सत्व संशुद्धेर ज्ञान योग व्यवस्थितिहि दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्यवम् अहिंसा सत्यनुक्रोधस्त्याग शान्तिरपेक्षणम् दयाभूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं हरिरक्षाफलं तेजक्षमादृति शौचं रुद्रोः न किमानतः भवती सम्पदं दैवीं अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य मान भारत। हे भरत, श्री भगवान ने कहा हे भरत पुत्र। ये कहा ठीक है, कहा या कहे? कहा, ओके। हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। दैवी दैवीम अभिजातस्य भारता, तो दिव्य स्वभाव से उत्पन्न हुआ, स्वभावों को युक्त उत्पन्न हुआ। अभिजातस्य मतलब जो जन्म लेते हैं, तो जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं, या जिनके अंदर ऐसे दैवी प्रवृत्तियां होते हैं, तो ये अभिजातस्य शब्द का अर्थ होता है। तो कौन होते हैं वो? पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं अर्जुन को डरता कि इस युद्ध करने से क्या होगा, बुजुर्गों का हत्या होगा, कुलक्षय होगा, उनके हत्या होने के कारण अधर्म बढ़ जाएगा, सभी लोग धार्मिक नियमों को पालन करना बंद कर देंगे। तो विशेष करके समाज में ये 10 संस्कार जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो संस्कार क्या होते हैं? वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होते हैं, हमारे सत्व या चेतना को शुद्ध करने करते हैं। वो गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ होते हैं। तो उनका बंद करेंगे, बंद करने के बाद वो खत्म हो जाएंगे। खत्म होने के कारण क्या हो जाएगा? तो सब अधर्म फैलेगा। अधर्म फैलने से स्त्रियां भी दूषित होंगे, स्त्रियां दूषित होंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ण संकर का उत्पत्ति होगा। तो ऐसे लोगों का उत्पत्ति होगा जो वर्णाश्रम में भाग नहीं रह सकते हैं, या वो सभी लोग असुरी प्रवृत्ति वाले होंगे और समाज को नरक बना देंगे। और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, उनके बुजुर्ग सभी लोग पतन हो जाएगा नरक में उनका, और वो लोग भी अंत में नरक में चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी नरक का सृष्टि करते हैं और यहाँ के जाने के बाद भी नरक में चले जाते हैं। तो ये ऐसे प्रवृत्ति वाले जन्म लेंगे। तो इसलिए जो ये महत्वपूर्ण होता है कि अच्छे संतान को उत्पत्ति हो, तो उसके लिए चेतना का शुद्ध होता, शुद्धिकरण शुद्ध होना चाहिए, और ये सभी संस्कारों का पालन करना चाहिए, तभी अच्छे संतान का उत्पत्ति होता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे, कुत्ते बिल्ली भी क्या करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, लेकिन मनुष्य भी ऐसे ही संतान को उत्पत्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं रहता है ना। तो ये गृहस्थ जीवन में वो मनुष्य जीवन का क्या, हम लोग मनुष्य जीवन को प्राप्त किए और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके गृहस्थ बन गए, गृहस्थ बन के संतान उत्पत्ति किए, लेकिन वो विशेषता क्या है? गृहस्थ मनुष्य जीवन में जो गृहस्थ स्वीकार करके संतान उत्पत्ति करने से, या पशु जीवन में संतान उत्पत्ति करने, उनमें क्या अंतर है? तो अंतर यह है कि मनुष्य जीवन में ऐसे संतान को उत्पत्ति करना चाहिए जो दैवी प्रकृति है उनसे युक्त है। तो ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह संतान उत्पत्ति करने से कोई लाभ नहीं है, तो वो समाज के लिए भी लाभ नहीं है और अपने आप के लिए भी लाभ नहीं है। तो वहाँ पर पहले अध्याय में वर्णन आता है कि तो ऐसे संतान क्या करेंगे, कोई ऐसे धार्मिक नियमों को नहीं पालन करेंगे, पिंडदान वगैरह, वो भी एक संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं उसको, वो पालन नहीं करेंगे, तो उससे क्या हो जाता है, वो व्यक्ति परिवार वाले नरक में उनका पतन हो जाएगा। तो इसके कारण ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दूसरे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऐसे संतानों का उत्पत्ति करने से समाज तो दैवी प्रकृति या दूसरे की एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील समाज को स्थापित कर सकते हैं, होलिस्टिक सोसाइटी। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील समाज को हम लोग स्थापित कर, वही वर्णाश्रम धर्म है। तो उसके लिए वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए ऐसे संतानों का जरूरत होता है। हम इसको बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं और यहाँ पर प्रभुपाद जी वो उल्लेख कर रहे श्लोक, धर्मा विरुद्ध बलतेषु कामोऽस्मि कर्तृष्वा, मैं ऐसा काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो ऐसे धार्मिक रीति के अनुसार, धार्मिक नियमों के अनुसार ऐसे संतानों को उत्पत्ति करना चाहिए। तो व्यभिचार करने से क्या होता है, मन अशुद्ध हो जाता है और देहात्म बुद्धि में एक व्यक्ति जाते हैं। इसके कारण बहुत सारे ऐसे असुरी गुण का सृष्टि हो जाता है, तो इसलिए वो नहीं करना चाहिए। धार्मिक नियमों के अनुसार ही सिर्फ प्रजापति करने के लिए तो हम इंद्रियों को उपयोग करना चाहिए। तो तब समाज क्या होगा, या संतान दैवी प्रवृत्ति से जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे गुणों का वर्णन हो रहा है, 26 कुछ है यहाँ पर। तो इन गुणों का वर्णन हो रहा है और इन गुणों को सभी वर्ण और आश्रम के अनुसार उनको क्या करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए। विशेष करके यहाँ पर दैवी समाज और असुरी समाज, दैवी और असुरी गुण, असुरी स्वभाव का वर्णन जो हो रहा है, समाज में जब दैवी गुण होते हैं तो वर्णाश्रम धर्म होता है और जब दैवी गुण नहीं है तो वर्णाश्रम धर्म नहीं होता है। या दूसरे शब्दों में वो समाज क्या हो जाता है, असुरी समाज होता है। तो आधुनिक समाज क्या है, वो असुरी समाज है, क्योंकि वहाँ पर कोई वर्णाश्रम का पालन नहीं करते, इन गुणों का अनुशीलन नहीं करते हैं, इसके कारण वो सभी असुरी समाज हैं, आधुनिक समाज। तो ये सभी गुण वर्णाश्रम के व्यवस्था के अनुसार स्वीकार किया जाता है। पहले 3 गुण है वो सन्यासी के लिए है। उसमें पहला है सन्यासी, मतलब कौन होते हैं, तो वर्णाश्रम में 4 आश्रम और 4 वर्ण होते हैं। तो वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं और आश्रम क्या होते हैं, तो ब्रह्मचारी गृहस्थ वर्णप्रस्थ सन्यासी, ऐसे आश्रम होते हैं। तो वर्ण ये एक सोशल ऑक्यूपेशन है, सामाजिक वृत्तियां हैं, और आश्रम जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन में अलग अलग स्तर है। तो ये सब कुछ क्या है, वैराग्य और विद्या के आधार पर है, विशेष करके जो आश्रम जो है और उसके अनुसार भी वर्ण होते थे, या वर्ण के अनुसार आश्रम हुआ करते थे। ठीक है, तो पहले सन्यासी के 3 लक्षण गुणों को बारे में वर्णन कर रहे, या ये पहले 3 गुण सन्यासी को अनुशीलन करना चाहिए इसके। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं सन्यासी क्या है, सभी वर्ण और आश्रमों के गुरु होते हैं वो। तो पहला चीज है अभयम, वो भय रहित होना चाहिए। तो भय रहित मतलब इस जगत में भय कितना क्या होता है, देहात्म बुद्धि में होने के कारण तो भय होता है, कैसे मैं अपना जीवन को पालन करूँ, मेरा भविष्य क्या होगा, यही चिंता रहता है ना भौतिक जगत में, है ना। तो विशेष करके जो गृहस्थ होते हैं उनको पता रहता है क्या होगा भविष्य में, उनके बारे में हमेशा चिंता रहता है कैसे हम जीवन निर्वाह करेंगे, तो ऐसे उसको भय कहते हैं। लेकिन सन्यासी को इसके बारे में भय नहीं होना चाहिए कि भगवान मुझे क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, भगवान के ऊपर उनको निर्भर होना होता है, तो सब कुछ उनके कृपा के ऊपर निर्भर होना होता है। कभी कभी वो उनको वो भ्रमण करते हैं, सन्यासी मतलब हरिवृजा का आचार्य होते हैं, तो कभी कभी जंगल में भी उनको जाना पड़ता है, आजकल तो नहीं है, आजकल इस जंगल में जाना पड़ता है तो जंगल में जाना पड़ता है, तब उनको ऐसे डर में रहना चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा मेरा रक्षा। तो विशेष करके वो सन्यास तब ले सकते हैं जब वो उनको परमात्मा का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। तो हम लोग छठे अध्याय में देखा हम लोगों ने, अब क्या है, परमात्मा समाहित हो जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, जो इंद्रियों को निग्रह करते हैं और प्रशांत है, मन भी उनका शुद्ध है, वैसे व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त किया है। तो सब जगह वो परमात्मा के देखते, परमात्मा को देखते हैं वो, और कभी भी उनको अकेला महसूस नहीं होता है, वो हमेशा उनको मेरे साथ परमात्मा है करके उनको महसूस होता है। तो ये सन्यास लेने के लिए क्या है, क्वालिफिकेशन है। तो जितात्मना प्रशांतस्य होना चाहिए, पूरी तरह से इंद्रियों के ऊपर निग्रह होना चाहिए और प्रशांत शुद्ध मन वाले होना चाहिए, तब परमात्मा समाहित, परमात्मा को सब जगह वो देख सकते हैं, तो इसलिए उनको कभी भय नहीं रहता। और विशेष करके सन्यास मतलब क्या होता है, सत के प्रति सत का आचार या पूरी तरह से समर्पण भावना रहता है परम सत्य के प्रति। तो विशेष करके हम लोग बोलते वैष्णव सन्यास में क्या है, सब कुछ भगवान को मन जो वाणी और शरीर है भगवान को समर्पित होना चाहिए। भगवान को समर्पित मतलब वो पूरी तरह से समर्पित, मतलब वो ही इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो इसलिए सत्य बोलना उनको होता है सब कुछ, कभी परम सत्य को छोड़कर और कुछ उनको कोई उनके बारे में छोड़कर प्रचार नहीं करना होता है। तो जब ऐसे प्रचार करते हैं तो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नहीं इसको सहन नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या होगा, उनके शत्रु भी हो सकते हैं, है ना। तो जब शत्रु होते हैं तो वो भयभीत नहीं होना चाहिए, कभी भी डर के परम सत्य में सत्य को प्रचार करने में, विशेष करके सन्यासी मतलब प्रचारक होता है वो, ही ट्रैवल्स एवरीवेयर डिस्ट्रीब्यूट्स नॉलेज। तो इसके कारण उनको कभी भी भयभीत नहीं रहना चाहिए, तो हमेशा भगवान को क्या होना चाहिए, भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, है ना। जब आप सत्य का प्रचार करते हैं तो लोग वो सहन नहीं हुआ, इतिहास में हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे, तो बहुत सारे ऐसे शत्रु होंगे, जैसे शीला प्रभुपाद जी को वो जो साम्यवादी लोगों ने चेतावनी दिया था कि आपको हत्या कर देंगे हमसे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी मारने का कोई ऐसे षड्यंत्र रचा गया था। तो जो भी सत्य को प्रचार करते हैं उनके विरुद्ध बहुत लोग होंगे, लेकिन सन्यासी मतलब जब सन्यास लेते हैं तो वो सत्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण के प्रति, तो नहीं तो वो सन्यासी नहीं है। वो सन्यासी का जो योग्यता है वो गवा देते हैं। तो ऐसे अभय होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, उसको ऐसा जो विश्वास जो होता है उसको अभय कहते हैं। वो रामानुजाचार्य के एक कजिन ब्रदर थे, उनका नाम था गोविंद करके, वो गृहस्थ थे। वो उस समय कैसे होता था, श्रीरंग में सभी गृहस्थ भी क्या है, मंदिर में रहते थे, मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा समय वो मंदिर में भगवान की सेवा में लगे रहते थे, कभी एकाध दिन घर जाते थे। तो जब वो गृहस्थ थे तो उनके पत्नी के माँ जो है वो हमेशा कंप्लेन करते रहते, ये घर कभी आता ही नहीं है ऐसा। तो और गृहस्थ में ये सभी कार्य होते हैं ना, गर्भधारण संस्कार करना वो सब करते हैं, ठीक है। तो तब रामानुजाचार्य ने उनको बताओ, जाओ जाओ घर जाओ, अपना गृहस्थ का भी जो कर्तव्य है वो भी करना चाहिए ऐसे। हाँ वो गए, लेकिन जो गृहस्थ के वो गर्भदान संस्कार वगैरह उनको करने के लिए हुआ नहीं, क्योंकि वो कहते थे मैं वही कैसे करूँ, क्योंकि वो क्या है सब जगह परमात्मा को देख रहे थे, उनके उपस्थिति में कैसे करूँ वो ऐसे। तो फिर बार बार फिर तब रामानुजाचार्य ने उनको संन्यास दे दिया, अभी आप गृहस्थ में रहने के लिए योग्य नहीं है, जब है ना। गृहस्थ में रहना मतलब क्या है, वो उनको देहात्म बुद्धि में रहना चाहिए, तभी वो गृहस्थ के कार्य कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले इस कम में देखते हैं ना, वो हम बता रहे थे सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे, जन्म होने के बाद ही तुरंत घर से निकल गए वो, और जब घर से निकल गए तो वो एक स्थान पर आते हैं और उनके पीछे पीछे व्यासदेव भी आते हैं, हे पुत्र रुको 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 करके। तो पुत्र का स्नेह से वो उनके पीछे पड़े थे, उनको स्नेह को देखकर वृक्ष भी अश्रु बहा रहे थे। तो एक स्थान पर आते हैं जहाँ पर एक तालाब में कुछ स्त्रियाँ स्नान कर रहे थे, जनरली भारत में तालाबों में वगैरह स्त्रियाँ स्नान करते थे, वो निर्वस्त्र स्नान करते थे, लेकिन वहाँ पर कोई पुरुष नहीं जा सकते थे, तो अलग अलग उनका स्नान करने का स्थान होता था। और हम लोग देखते हैं वो जाते हैं तो वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, सुखदेव गोस्वामी वहाँ से गुजरते रहते हैं तो वो स्त्रियाँ, लेकिन जब शुक्र जब परीक्षित जब व्यासदेव आ गए तुरंत ही वो वस्त्र पहन लिया। तो क्या है, वो पहले ब्रह्म के स्तर पर वो कभी बाहरी जो शरीर को देखते नहीं है सुखदेव गोस्वामी, वो उनको स्त्री पुरुष कुछ पता नहीं, उनको कोई भेद नहीं, तो वो साक्षात्कार है। लेकिन जो क्योंकि व्यासदेव वो भी कम नहीं है, वो तो भगवान के अवतार है, वो भी भगवान के भक्त है, लेकिन वो गृहस्थ होने के कारण उनको ये शरीर में भेद करना होता है, ये स्त्री है ये पुरुष है करके, नहीं तो वो गृहस्थ के कार्य नहीं कर सकते है ना। तो वैसे ये बाहरी शरीर को नहीं देखना या भेद करना वो गृहस्थ का लक्षण है। सभी को आत्मा के दृष्टिकोण से देखना, सबके भगवान के अंश है या परमात्मा सभी के हृदय में है, तो वो सन्यासी के लक्षण है, इसके कारण वो अभयम रहते हैं। और उसके बाद में सत्व संशुद्धि अभयम सत्व संशुद्धि, अपने अस्तित्व को उनको शुद्ध करना होता है, चेतना या अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। तो विशेष करके बौद्धिक जगत में क्या है, स्त्री के प्रति जो आकर्षण है वो सबसे बड़ा क्या है, कल्मश है। हमारा जीवन अशुद्ध हो जाता है ना, है कि नहीं। सो सन्यासी को विशेष करके कोई स्त्री से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। तो ये सत्व शुद्ध सिद्धि, अस्तित्व को शुद्ध करने का अर्थ है। क्यों ये, जब स्त्री के संपर्क में आते हैं पुरुष, उनका देहात्म बुद्धि बढ़ जाता है। तो सत्व शुद्धि करना मतलब देहात्म बुद्धि को से मुक्त होना, हमारा चेतना को शुद्ध करना। तो ये आहार निद्रा भय मैथुनम क्या है, देह, ये देह के जरूरतें हैं। तो क्योंकि हम लोग अभी हमारा चेतना देहात्म बुद्धि में है, देहात्म बुद्धि से वो खलुषित है, उसके कारण हम लोग सोचते हैं कि ये मेरे जरूरतें हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम। तो आत्मा का कुछ ये जरूरत नहीं है, आत्मा के लिए आहार निद्रा भय मैथुन का जरूरत नहीं है, लेकिन देहात्म बुद्धि में होने के कारण हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये मेरे जरूरत है। और उसे विशेष करके उसमें मैथुन जो है वो हमें ज़्यादा देहात्म बुद्धि में डाल देता है। तो सन्यासी को विशेष करके कोई स्त्री से संपर्क में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दे रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जब सन्यास लिया तो बहुत ही खड़क कठोरता से वो नियम पालन करते थे वो, और इतना कठोरता से नियम पालन करते थे, तपस्या करते थे कि उनके भक्तों को वो बहुत दुख होता था वो। क्योंकि भगवान क्यों ये सब करना चाहिए, भगवान तो भोक्ता है, एंजॉयर, तो ये सब करने की क्यों जरूरत है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु एक सही संन्यास आश्रम क्या है उसको स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वो भक्तों के कष्ट को देखकर कभी कभी अपने जो तपस्या है वो कम करते थे। नहीं तो वो बहुत बहुत ही सर्वोच्च श्रेष्ठ दर्जे का जो स्तर है उसको स्थापित किया उन्होंने। तो विशेष करके कोई भी उनके जो जो शिष्याएं या मतलब स्त्री होते थे उनके नज़दीक नहीं आ सकते थे वो, तो दूर से ही वो दंडवत करते थे। तो सन्यासी को ज़्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए स्त्रियों के संपर्क में। और हम लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, वो छोटा हरिदास को उन्होंने क्या कर दिया, तो भगवान आचार्य ना, भगवान आचार्य उनको प्रसाद के लिए बुलाते हैं, और राइट परमानंदपुरी है भगवान आचार्य कौन है, तो उनको प्रसाद के लिए बुलाते हैं, और प्रसाद उनको वो चावल परोसते हैं, और तुरंत ही वो तुरंत ही उसको स्वाद लेने से तुरंत ही प्रश्न पूछते हैं उनको स्वाद लेके एक बार कि ये कहाँ से आया ये चावल। तो उन्होंने ऐसे बताया कहाँ से लेकर आए थे, कौन गया, छोटा हरिदास, उसको बोलो खल से मेरे मुझे मुंह दिखाना मत करके खत्म हो गया। तो क्यों, वो जब वो लेकर आने के लिए गए थे वो अकेले में थे स्त्री के साथ, मतलब ऐसे कुछ विशेष वर्णन नहीं हुआ, जैसे हम लोग देखते हैं चैतन्य चरितामृत में क्या हुआ था, ऐसे कुछ विशेष वर्णन नहीं हुआ। फिर भी एक उत्कृष्ट जो क्या है, नियम है, आदर्श स्थापित करना चाहते थे। इसके कारण चैतन्य महाप्रभु क्या कर दिए, उनको बर्खास्त कर दिया। हालांकि उनके भक्तों ने बहुत विनंती किया, उनका कोई गलती नहीं उसमें, आप उनको माफ़ कर दीजिए, आप दयालु है, वो सब क्रिया नहीं बोले। तो बार 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 विनंती करने से क्या कर दिए चैतन्य महाप्रभु, शत्रु हो गए। तुम लोग क्या करो, छोटा हरिदास के साथ यहाँ पर रहो, मैं कल चले जाऊँगा यहाँ से ऐसे। तो उसके बाद छोटा हरिदास क्या करते हैं, वो प्रयाग जाके आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे, और जब चैतन्य महाप्रभु उसको सुने तो उन्होंने दुखी नहीं हुए। जिनको जो कर्म का फल भुगतना है वो भुगतना ही है ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही अच्छे उदाहरण स्थापित करना चाहते थे। तो यहाँ पर वो बता रहे एक श्लोक लेकर, श्लोक तो नहीं अनुवाद है यहाँ पर, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारंपरा जिगुरुषुर्भवसागरस्य संदर्शनाम विषयनामत योषिताहं च हंत आहंत हंत विषभक्षणप्य साधो। तो इसका अनुवाद यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है, वो क्या कहते हैं, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहते हैं तथा भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्र तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग न करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि ऐसे अवैध इच्छाओं करने पूर्व आत्महत्या कर ले। तो जो सन्यासी सन्यास लेके फिर से ऐसे इच्छा करता है तो वहां पर उनको सन्यासी नहीं, सातवें स्कंद में क्या बताया गया, वांतासी। वांतासी वांतासी मतलब जो अपना वॉमिट है, क्या है, उल्टी विल्टी, तो उसको वापस ले रहे, मतलब ऐसे करना हाँ ऐसे कहते हैं। ऐसे सातवें स्कंद में कहा गया है, क्योंकि उसने त्याग दिया है घर को, परिवार को, या स्त्री को, पत्नी को, सब कुछ त्याग दिया है, फिर से वो इच्छा कर रहा है, मतलब क्या है, तो वो जो त्यागा हुआ है वो फिर से लेने के समान है, ऐसे बताते। तो ये है यहाँ पर इस श्लोक में भी क्या बताया गया है, इससे अच्छा है कि आत्महत्या कर ले। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया, एक सन्यासी ने उनको पूछा कि प्रभुपाद जी ऐसे इच्छाएं आ गए तो सन्यासी को क्या करना चाहिए, उन्होंने बताया आत्महत्या करना चाहिए। तो बाद में वो सन्यासी गायब हो गए, कहाँ गए पता नहीं। तो ऐसे ऐसे होता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, ब्रह्मचारी क्या है, वो क्या स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो सन्यासी नहीं है, आप चिंतित मत हो जाए। ठीक है, बाद में उसको प्रश्न जो बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर वो निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारंपरा जिगमिषु भवसागरस्य संदर्शनामत योषिताहं विषयनामत योषितां च अहंत हंत विषभक्षणप्य साधो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निष्किंचनस्य, निष्किंचन जो भौतिक चीज़ों को त्याग दिया है, उससे विरक्त हो गया है, निष्किंचन मतलब जिनके कोई भौतिक वस्तुएं नहीं है, कोई संपत्ति नहीं, वस्तुएं नहीं है। तो कैसे होता है? पूरा विरक्त होता है। हाँ, उसका क्या संपत्ति होता है? सिर्फ कोपीन उसका संपत्ति होता है। हाँ, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, भगवान की भजन में वो लग गया है। हाँ, भजनोन्मुखस्य पारंपरा जिगमिषुर भवसागरस्य, उन्होंने निश्चित किया है कि मैं इस भवसागर को पार करके उस ओर जाऊंगा, मतलब आध्यात्मिक जगत जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसे व्यक्ति हाँ संदर्शनाम विषयिनाम अथ योषिताम च, संदर्शनाम, संदर्शनम मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी वो कह रहे हैं दृष्टि देखना, जो विषयी लोग है, भौतिकवादी लोग है, प्रभुपाद जी इसको कहते थे सन्यासी का क्या गुण होना चाहिए? ही शुड नॉट रिग्रेट, बोलते थे। रिग्रेट, रिग्रेट मतलब क्या बोलते हैं? पछताव, पश्चाताप नहीं करना चाहिए उसको, मतलब पछताना नहीं चाहिए। हाँ, ये अर्थ है। विषयी नाम, विषयी लोगों के ओर देखना नहीं चाहिए, जो इंद्र तृप्ति से आसक्त है वैसे लोगों के ओर देखना नहीं चाहिए। कैसे? वो मतलब उनके ओर देख रहा है, मतलब क्या है वो? हाँ, वो मन में वो विचार आ जाता, हाँ मैं भी ऐसे रह सकता था, मैं भी ऐसे सुख भोग कर सकता था, ऐसे मन में नहीं आना चाहिए, ये पछताव बोलते हैं उसको। आपने त्याग दिया है फिर पछता रहे, मैं भी ऐसे कर सकता था, ऐसे पछता रहे, तो वो क्या है? तो वो संन्यास नहीं है। तो और स्त्री की ओर भी ऐसे देखना नहीं चाहिए, हाँ मैं भी ऐसे पत्नी हो सकती थी, मेरा भी ऐसे नहीं है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो श्री चैतन्य, यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु वो उनके स्वयं के उदाहरण देखते हैं। प्रताप रुद्र महाराज क्या थे? बहुत ही महान भक्त थे भगवान के। वो बार 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 विनती किया उन्होंने, हाँ, जो सार्वभौम भट्टाचार्य को, सार्वभौम भट्टाचार्य उनके ओर से चैतन्य महाप्रभु को कहते थे आप ये राजा से मिलिए, वो महान भक्त है, महान वैष्णव है वो। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले वो, तो कभी नहीं बोले। तो कभी भी उन्होंने अन्य बहुत सारे भक्त, रामानंद राय, अन्य कई सारे भक्तों ने विनती किया, कभी वो उनको नहीं मिले। एक बार जब रथ यात्रा चल रहा था, रथ यात्रा में क्या होता था, चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे और उनको रक्षा करने के लिए क्या होता था, एक सर्कल बनाया जाता था और वो भक्तों का पहला एक सर्कल होता था और उसके बाद में राजा और उनके जो मंत्री सेवक जो है वो लोगों का सर्कल होता था। ऐसे हाँ उनको, उनके भक्तों को और उनको रक्षा किया जाता था, क्योंकि बहुत भीड़ रहता है ना, है ना। तो ऐसे नृत्य करते करते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर राजा के हाथ में गिर गए। तो जब बाहर होश आ गया, उन्होंने देखा राजा के हाथ में है वो, तुरंत ही छी विषय ऐसे बोल दिया ऐसे वहां से दूर गए। तो प्रताप रुद्र महाराज को बहुत दुख हुआ, क्या मेरा जीवन है ये ऐसे राजा बनने का, ऐसे जीवन प्राप्त, जन्म प्राप्त करने का, क्या चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं मिलता है तो ये क्या जीवन है, ऐसे वो शोक करते थे। तो कभी चैतन्य महाप्रभु ऐसे विषयी लोगों को वो देखते नहीं थे। विषय राजा मतलब क्या है? धन स्त्री, यही राजा का अर्थ, भोग विलास, यही राजा है। तो इसलिए उनको कभी नहीं मिला। तो ये विषय चीजों से दूर रहना चाहिए, इंद्रिय भोग की वस्तुओं से दूर, वो सत्व संस्कृति है। तो उसके बाद में ज्ञान योग अव्यवस्थिति, इसके पहले ये अभी हम लोग सन्यासी के गुण वर्णन कर रहे हैं। कुछ इसमें जो भी इन दैवी गुणों का वर्णन हुआ है, कुछ गुण हैं वो सामान्य गुण है, सबके लिए लागू होते हैं, और कुछ गुण है क्या है वो विशेष विशेष वर्णाश्रम में जो व्यक्ति है उनके वर्ण और आश्रम के अनुसार लागू होते हैं। ये पहले तीन गुण है वो सन्यासी के लिए है। तो अगला क्या है, तीसरा क्या है, ज्ञान योग व्यवस्थित। तो ज्ञान अनुशीलन में संलग्न होना चाहिए। सन्यासी मतलब क्या है, वो स्कॉलरली लाइफ, सन्यासी मतलब स्कॉलर है, स्कॉलरली लाइफ उसके लिए सन्यास है। वो ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए और वो दूसरों को वितरण करना चाहिए, विशेष करके जो गृहस्थों को, तो घर घर जाके उनको वो क्या करते हैं, उपदेश देते हैं, तो भिक्षा के नाम पर जाते हैं और उनको उपदेश देते हैं गृहस्थों को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में वर्णन किया गया ना, लेकिन घर घर इसके लिए नहीं जाना चाहिए, वहां पे गृहस्थों का जो सुविधाजनक जीवन है उसको क्या, उसका आनंद लेने के लिए घर घर नहीं जाना चाहिए उनको। सुखदेव गोस्वामी उसके बारे में वर्णन हुआ, जितना गाय का दोहन किया जाता था उतना ही समय वो उनके घर में रहते थे, वो तुरंत वहां से निकल पड़ते थे, दूध लेकर तुरंत निकल पड़ा। तो ऐसे, और प्रथम स्कंद में विदुर का वर्णन आता है, तो विदुर संन्यास लिया उन्होंने, सभी तीर्थ स्थान में गए और वापिस आए, और वापिस आया उन्होंने आए वहाँ पर बताया गया, वो ये राज्य में जो युधिष्ठिर महाराज का अभी राज्य हो रहा था, युद्ध हो गया, खत्म हो गया था, कौरव सभी मर गए थे, धृतराष्ट्र क्या था, अंधा राजा, अभी भी आसक्त जीवन में, गृहस्थ जीवन में अभी भी आसक्त, वहीं पर अभी तक वानप्रस्थ नहीं लिया था उसने, तो अभी भी घर में ही था बूढ़े होने के बावजूद भी। तो फिर विदुर आता है, वहाँ पर ऐसे वर्णन आता है, वो घर घर में जो, या ऐसे राज्य का यू नो रॉयल राज्य का जो सुविधाएं हैं उसको सुख भोगने के लिए वो नहीं आए हैं, वो अपने बड़े भाई जो धृतराष्ट्र है उनको शिक्षा देने के लिए आए हो, तो उनको घर से निकालने के लिए आए हो, तो ऐसे शिक्षा देने के लिए वो घर घर जाते हैं। तो ये ज्ञान योग व्यवस्थित। और यहाँ पर बोलते हैं कि जब सन्यास, ऐसे ही भाव तक से कोई सन्यास ले लिया, उसके अंदर ज्ञान नहीं है प्रचार करने के लिए, तो क्या करना चाहिए, वो बैठ के आध्यात्मिक गुरु से सुनना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद यहाँ पर उपदेश दे रहे। यदि वह वास्तव में उन्नत है और गुरु के आदेश प्राप्त है तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक उपदेश दिया प्रभुपाद जी सन्यासियों को, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो सन्यासी है वो बहुत ही दे शुड प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस वेरी इंटेलिजेंटली, मतलब यहाँ पर जैसे तर्क और ज्ञान के आधार पर सो उपदेश करना चाहिए। यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप प्रचार नहीं कर सकते या ठीक तरह से, वो संन्यास स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्व संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। तो उसके बाद अगला है चैरिटी दान। तो ये गृहस्थों के लिए है, दान क्या है, गृहस्थों के लिए, क्योंकि अन्य जो भी आश्रम होते हैं वो विशेष करके वो भिक्षाटन के आधार पर जीवन बिताते हैं लोगों। तो विशेष करके गृहस्थों को क्या करना चाहिए, उनको दान देना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए। और प्रभुपाद यहाँ पर वो रूप गोस्वामी का जो सिद्धांत है वो हम देखते हैं बहुत, जब भी दान के बारे में चर्चा आती है श्रील प्रभुपाद वो रूप गोस्वामी के जो सिद्धांत है उसको उल्लेख करते थे। रूप गोस्वामी ने क्या किया, उनका बहुत सारा संपत्ति इकट्ठा किया था उन्होंने। हाँ, बहुत सारा संपत्ति इकट्ठा किए थे वो, और वो संपत्ति को आधा भाग उन्होंने क्या कर दिया, वैष्णवों को ब्राह्मणों को दान में दे दिया उन्होंने। और 25%, 25 भाग, 1/4 भाग उन्होंने क्या किया, वो अपने घर वालों को दे दिए और 1/4 इमरजेंसी में रख दिया उन्होंने। तो ऐसे हम लोग देखते हैं है कि, तो हम लोग देखते हैं कि रूप गोस्वामी ने ऐसे उदाहरण स्थापित किया। ऐसे ही सभी गृहस्थों को कृष्ण भावनामृत में प्रचार के लिए, या ऐसे संस्था जो कृष्ण भावनामृत को प्रचार करता है उनके लिए क्या करना चाहिए, ये दान देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तो अलग अलग 3 प्रकार के जो दान होते हैं अलग अलग गुणों में जो अगले अध्याय में आते हैं उसका उल्लेख कर रहे हैं, तो उसको हम लोग अगले अध्याय में ही चर्चा करेंगे। सत्वगुण में क्या होता है दान, रजोगुण में क्या होता है दान, तमोगुण में क्या होता है, तो उनके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। संक्षेप में यहाँ पर बताते हैं कि जो सत्वगुण में दान होता है वो शास्त्रों से अनुबंधित रहता है, और जो रजोगुण में होता है वो शास्त्र से अनुमोदित नहीं रहता है, वो सिर्फ धन का अव्यय है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान्यतः प्रभुपाद जी कहा करते थे वो सिर्फ कृष्ण भावनामृत को पूरा संसार भर में प्रचार करने के लिए ही दान देना चाहिए, ऐसे कहते हैं, उसी को सत्वगुण का दान कहते हैं। और उसके बाद धमा, धमा विशेष करके ये क्या है, वैसे अन्य आश्रमों में भी होता है लेकिन विशेष करके ये गृहस्थों के लिए बताया गया है। क्यों गृहस्थों के लिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में इंद्र तृप्ति के लिए थोड़ा छूट दी जाती है, उसको गलत फायदा उठाना नहीं चाहिए, वो अपने इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए। तो फिर से गृहस्थों को ऐसे मैथुन सुख में नहीं लगना चाहिए अपने पत्नी के साथ, सिर्फ जो कृष्ण भावना में जब बच्चे हैं उनको जन्म देने के लिए वो साथ में आना चाहिए वो। तो जब बच्चे नहीं चाहिए तो वो लोग अपने इंद्रियों को क्या कर देना चाहिए, निग्रह कर देना चाहिए, तो ऐसे मैथुन जीवन में नहीं लगना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे आधुनिक समाज, असुरी समाज, ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रासेप्टिव, हाँ गर्भ निरोधक, ऐसे कुछ चीज़ों को वो लोग क्या करते हैं या कुछ तरीकों अपनाते हैं, और ऐसे जितना हो सके उतना मैथुन में लग जाता है। तो वो क्या है, असुरी है, दिस इज डिमोनिक बोलते हैं, अबॉमिनेबल मेथड्स टू अवॉइड द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है यार, आपको करना है ठीक है, लेकिन बच्चा जन्म, यू नो, बच्चों को जन्म दे दो, ज़्यादा बच्चों को जन्म दे दो, आजकल बच्चे क्या हो गए हैं, बोझा बन गए हैं समाज के लिए, इसलिए हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, ऐसे कुछ कुछ सरकार प्रचार करता है लोगों को, ये सब पॉपुलेशन कंट्रोल बोलते हैं। दुनिया में अभी जो जो जनसंख्या है उसके 10 गुना ज़्यादा भी है तो भी भगवान उनको पालन कर सकते हैं, और जो भी जरूरी है वो सब उपलब्ध है, लेकिन ये मूर्ख लोग अपना अपना कुछ कुछ थ्योरी बना के कुछ करते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना कैसे वो पापमय जीवन में लिप्त होना चाहते हैं लोग। तो ऐसे ग्रहस्थ क्या है, वो क्या है, डिमोनिक असुरी है वो, ऐसे बोलते हैं। तो बच्चों का हत्या करना, एबॉर्शन, और ऐसे गर्भनिरोधक तरीकों को अपनाना, तो ये सब असुरी है। अभी भी वो मुसलमान लोग ऐसे नहीं करते हैं ना, लेकिन वो लोग भी कर रहे हैं आजकल, ऐसे लगता है। तो जो गृहस्थ भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तो उनको भी सिर्फ जनोत्पत्ति के लिए मैथुन जीवन में लगना चाहिए। तो और ये बच्चे कैसे होना चाहिए, भगवान कृष्ण को सेवा करने के लिए उनको भक्त बनाना चाहिए उनको। तो वो व्यक्ति यहाँ पर बोलता है, इफ ही इज एबल टू बिगेट चिल्ड्रन हु विल बी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वन कैन प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, बट विदाउट दिस कैपेसिटी वन शुड नॉट इंडल्ज फॉर सेंस प्लेजर। या ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे। तो वो ठीक है, आप जितना चाहे उतना बच्चे को जन्म दीजिए। तो अभी हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी समाज में बच्चे क्या है, बोझा बन गए। ये ऐसे समाज है, तो वो ऐसा ये सिस्टम व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसमें बच्चों को बोझा ही माना जाता है, वो हो ही जाते हैं बोझे, क्योंकि जन्म देने के लिए कितने सारे पैसा हो जाता है ना। आजकल क्या है, वो सिजरीन कुछ होता है, उसके लिए भी कितना हजारों की संख्या है। कभी कभी ऐसे बताते हैं, हमको एक वक्त नहीं बताए, 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा होता है कभी कभी, आप सिर्फ बच्चे को जन्म देने के लिए। ऐसे ऐसे ये लोग डॉक्टर लोग क्या है, रोग्स एंड थीव्स। कोई अभी स्वाभाविक रीति से जन्म नहीं लेते, उनको शरीर को काट के बच्चे निकाला जाता है। तो इसलिए वो बोझा है। कोई आप ग्रस्त बनना चाहते हैं तो ये सब के बारे में सोचिए आप पहले। ये उनकी तरफ देख रहे क्या है। ठीक है, तो उसके लिए फिर उनका जो भी जरूरतें हैं, और ये जो तथाकथित शिक्षण जो है आजकल बड़े बड़े शहरों में, जो ये जो LKG किंडरगार्टन कुछ भी बोलते हैं ना, उसके लिए भी कही 1 लाख तक, 1 लाख से भी ज़्यादा ऐसे होते हैं पैसा जाता है। ये सब नॉनसेंस है, इतना प्रोपेगेंडा किया है ये शिक्षण, मतलब बकवास। और हमारे भक्त लोग भी, हम कह रहे थे हाँ दोपहर में, हम लोग चर्चा कर रहे थे मुरलीधर प्रभु से, हमारे भक्त लोग भी क्या कर रहे हैं, बच्चे जन्म दे रहे हैं और वो कुछ असुरों को वो बच्चे दे रहे हैं, आप इनको प्रशिक्षण दीजिए हम असुर बनने के लिए, हम उसके लिए पैसा भी देंगे, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो ये है, ठीक है। एनीवे यहाँ पर दमा शब्द है, तो आजकल क्योंकि वो संबंधित है कि बच्चे बोझा बन जाते हैं इसके कारण, ये सब ऐसे कृत्रिम चीज़ों को लोग, असुरी कृत्रिम चीज़ों को उपयोग करके मैथुन जीवन में लग जाते हैं। और उसके बाद यज्ञ, यज्ञ भी किसके लिए है, जो गृहस्थों के लिए है। तो पहले ज़माने में ऐसे बहुत सारे यज्ञ हुआ करते थे, लेकिन आधुनिक ज़माने में वो करने के लिए योग्य नहीं है अभी कोई, इसके कारण प्रभुपाद यहाँ पर संकीर्तन यज्ञ बोल रहे हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद ये तीनों क्या है, गृहस्थों के लिए, क्या दमा और दान और उसके बाद यज्ञ, ये तीनों गृहस्थों के लिए है। और उसके बाद स्वाध्याय, ये किसके लिए है, ब्रह्मचारी के लिए। तो ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और ब्रह्मचार्य का अर्थ होता है वो स्त्रियों से दूर रहना चाहिए या मैथुन जीवन से मुक्त रहना चाहिए, और अपने मन को या हमेशा शास्त्रों को, वेद शास्त्रों को अध्ययन करने में उसको लगाना चाहिए। ये ब्रह्मचारी के लिए धर्म है ऐसे कहते हैं। तो स्वाध्याय या वेद अध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है ना। हम लोग शास्त्रों को गृहस्थ जीवन में नहीं पढ़ सकते, वो हमेशा स्त्री और बच्चे आपके इर्द गिर्द रहेंगे तो कैसे पढ़ सकेंगे ना? शास्त्रों का अध्ययन कहाँ पर होता है? वो ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है ना। वो हमेशा आपको पीड़ित करते रहेंगे तो वो कहाँ पर आप शास्त्र अध्ययन कर पाएंगे? वो नहीं है, ये नहीं है, वो लेकर आओ, ये लेकर आओ, ऐसे पीछे पड़े रहते हैं। तो इसलिए स्वाध्याय कहाँ पर होता है? ब्रह्मचारी आश्रम में होता है। हमारे पास एक ब्रह्मचारी आए थे मैं हमेशा अध्ययन करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा पत्नी को मुझे चाहिए जो मुझे तंग नहीं करेगी। वो उन्होंने, अरे बाबा वो होगा नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम में जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगना चाहिए। यही स्वाध्याय है। ये नहीं करेंगे तो ब्रह्मचार्य आश्रम में रहना कठिन है, तो मुश्किल है। तो हमेशा हमारे मन को लगना चाहिए। तो उसके बाद में तपस्या। तो तपस्या विशेष करके यहाँ पर वानप्रस्थों के लिए बताया गया है। तो वानप्रस्थ क्या है? वो तीसरा आश्रम होता है। तो गृहस्थ के बाद क्या होना चाहिए? वानप्रस्थ होना चाहिए, वो निवृत्ति लेना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर बैठे तो अभी समय है, आया है, अभी लेट भी हो गया है ना। तो वानप्रस्थ लेना चाहिए और तपस्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कि 100 साल में क्या है, 25 साल ब्रह्मचारी जीवन, 25 साल गृहस्थ जीवन और 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास। ऐसे बोलते आजकल तो 100 साल जीते नहीं है तो 35-30 में रिटायर हो जाना चाहिए।
25 साल में जब ब्रह्मचारी आश्रम गया
या नहीं तो उसको डिवाइड करेंगे तो क्या है, 35-40 साल तक उसको रिटायर हो जाना चाहिए।
संन्यास का टाइम कट होगा, संन्यास आश्रम का टाइम कट होगा।
हाँ संन्यास आश्रम का कट होगा। हाँ 30 साल में शादी करते हैं। मिडिल एज क्या है, ब्राइड ग्रूम बोलते हैं ना उनको, मिडिल एज ब्राइड ग्रूम। प्रचार नहीं किए उनको तो ये सब वैदिक क्या है, नियम है, डिसिप्लिन है, धार्मिक नियम है। तो उसको तपस्या करना चाहिए। तो क्या तपस्या करना चाहिए? तो मन शरीर और जिह्वा को नियंत्रण करने का तपस्या करना चाहिए। तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषये तदीर सर्वमपि इमां तस्मिन् प्रतिविंशशश्यात्। ऐसे होते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे पूरा वर्णाश्रम सभ्यता ही तपस्या के आधार पर है। तो तपस्या के बिना कोई मनुष्य मुक्ति की ओर प्रगति नहीं कर सकता है। प्रभुपाद यहाँ पर लिखते देखे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कृष्ण भावनामृत प्रचार में भी यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये तपस्या के बारे में क्या बोल रहे, देखिए द थेरी दैट देर इज नो नीड ऑफ ऑस्टियर ऑस्टियर, हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे क्योंकि प्रभुपाद जी के वाक्य अच्छा रहता है, बाद में हिंदी में भी पढ़ेंगे। द थेरी दैट देर इज नो नीड ऑफ ऑस्टेरिटी, वो तपस्या के जो जो पैराग्राफ है ना उसके अंतिम भाग में हम पढ़ रहे हैं। द थेरी दैट देर इज नो नीड ऑफ ऑस्टेरिटी इन लाइफ, दैट वन कैन गो ऑन स्पेकुलेटिंग एंड एवरीथिंग विल बी नाइस, इज रिकमेंडेड नाइदर इन वैदिक लिटरेचर नॉर इन भगवदगीता। सच थेरीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाई शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट हु आर ट्राइंग टू गैदर मोर फॉलोअर्स। इफ देर आर रिस्ट्रिक्शंस रूल्स एंड रेगुलेशंस पीपल विल नॉट बिकम अट्रैक्टेड। देयर फॉर दोज हू वॉन्ट फॉलोअर्स इन द नेम ऑफ रिलीजन जस्ट टू हैव अ शो ओनली डोंट रेस्ट्रिक्ट द लाइव्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स नॉर देयर ओन लाइव्स बट द मेथड इज नॉट अप्रूव्ड बाई द वेदास, ऐसे कहते हैं। हम हिंदी में पढ़ेंगे उसको। तपस्या के बिना कोई मुक्ति, किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। यह सिद्धांत की संस्तुति न तो वैदिक साहित्य में की गई है न भगवद्गीता में, कि जीवन की तपस्या भगवद्गीता में की, जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है, और कोई कल्पनात्मक चिंतन करते रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दूसरे शब्दों में क्या रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज नाइस, हाँ सब ठीक है, सब चलेगा, सब ठीक है, ऐसे हाँ। तो हम लोग देखते हैं आजकल के भक्तों के लिए भी कोई ऐसे कोई शिक्षा पता ही नहीं है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हाँ मंगल आरती करना चाहिए और अच्छी तरह से जप करना चाहिए, ऐसा कोई शिक्षा ही नहीं है, है ना। प्रभुपाद जी कहा करते थे इफ यू डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग देर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो सुबह जल्दी उठेंगे नहीं तो कोई आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं है। तो भक्ति में भी तपस्या होना ही चाहिए, सबको जल्दी सुला के सुबह जल्दी उठाना चाहिए, उठना चाहिए गृहस्थों को भी, तो नहीं तो नहीं प्रगति होगा। आजकल बहुत सारा ऐसे कुछ थियरीज निकल रहा है, तुम 16 माला जप करो और 4 नियम का पालन करो, प्रभुपाद जी आपको भगवत धाम लेके जाएंगे, पीछे का दर ऐसा कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे बता। और ये लोग जो बोलते हैं इसको कोई ये नियम पालन नहीं करते, 16 वाला भी नहीं करते और 4 नियम का भी पालन नहीं करते। तो ऐसे होता है ना, तो कोई नियम नहीं कुछ नहीं, ऐसे प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं बहुत कड़क बोल रहे, देखिए शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट, हालांकि ये भक्ति भक्तों के बारे में नहीं बोल रहे, जो तथाकथित बाहर के जो साधु होते हैं कुछ तपस्या नहीं है, है ना, जो गुरु साधु होते हैं ना कोई तपस्या नहीं कुछ नहीं, तो हमारा जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, ऐसे तपस्या होना ही चाहिए। हाँ तो तपस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद सरलता, सरलता और सरलता क्या है, ये सबके लिए है, सभी वर्णाश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी सबके लिए है। तो सरलता मानसिक अंदरूनी सरलता होता है, मानसिक सरलता और बाहरी सरलता भी होता है। तो बाहरी सरलता मतलब बहुत कम से कम चीज़ों से हमें जीवन निर्वाह करना चाहिए, उसको बाहरी सरलता कहते हैं। अंदरूनी मतलब ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मनोधर्म में नहीं लगना चाहिए, मानसिक चिंतन में नहीं लगना चाहिए, डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं वो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सरलता है। तो बहुत ही सरल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए। और उसके बाद में अहिंसा, तो अहिंसा का अर्थ बता रहे हैं प्रपद, किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना, उसको अहिंसा कहते हैं। क्या अर्थ है इसका, अरेस्टिंग द प्रोग्रेसिव लाइफ ऑफ एनी लिविंग एंटिटी, बहुत अच्छा परिभाषा दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। उसका अर्थ क्या बताइए? अहिंसा से क्या संबंध है, हिंसा से क्या संबंध है? प्रगतिशील जीवन को रोकने का वो हिंसा होता है, तो वो क्या संबंध है हिंसा से? हिंसा मतलब हत्या करना, दूसरों को मारना। तो विशेष करके जो जीव निम्न योनि में है, जिनके ऊपर विशेष करके हत्या या हिंसा होता है, वो लोग अपने कर्म के अनुसार क्या है, वो प्रगति करते रहते हैं। निचले योनि में क्या है, वो कर्म को भुगतते हैं ना। तो ऐसे ऐसे वो निम्न पशु से ऐसे ऊंचे 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 स्तर वो योनि में प्रवेश करते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई जीव को हत्या कर देता है, तो वो फिर से उसी जन्म उसी योनि में उसको जन्म लेना पड़ता है। तो बार 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 जब उसका हत्या हो जाता है, तो उसी योनि में उसको जन्म लेना पड़ता है। तो ये प्रगतिशील जीवन को रोकने का समान अर्थ है, इसको हिंसा कहते हैं। और अहिंसा मतलब इसको रोकना नहीं है, तो है ना। प्रभुपाद यहाँ पर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए तो प्रचुर अन्न तथा फल दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने के लिए लत पड़ी हुई है। भारत में भी ना कितना खा रहे हैं आजकल लोग, है ना, इतना सारा। कौन बोले? लेकिन पशुओं के वध के कोई आवश्यकता नहीं है, यह आदेश हरे के लिए है। जब कोई विकल्प न रहे तभी पशु वध किया जाए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो, तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने की इच्छुक है, उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है कि किसी प्रगतिशील जीवन को रोक न जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरे पशु योनि में देहांतर करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है, तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई मनुष्य किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय ही मार दिया जाता है, तो पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतएव अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति के को नहीं रोकना चाहिए, यही अहिंसा है। यहाँ पर किसके लिए है ये बताया नहीं गया है। जब भी बताया नहीं जाता है, तो समझना चाहिए वो सबके लिए है। समझ आ गया? सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ मोड़ना नहीं, मरोड़ना नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में यहाँ पर सत्य मतलब वेदों में वर्णन आया है। सो सत्य का ज्ञान कहाँ पर आता है? वेदों में वर्णन आता है। तो वेदों को तोड़ मोड़ के अपने स्वार्थ के लिए उनको उपयोग नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं भगवद्गीता में बहुत सारे ऐसे, भगवद्गीता के ऊपर बहुत सारे ऐसे टीकाएं हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वार्थ के लिए वो लिखे गए हैं। तो उन टीकाओं को हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, ऐसे करना भी नहीं चाहिए। दूसरा, और उसके बाद अक्रोध, तो क्रोध को रोकना। क्रोध क्या है, हम लोग तीसरे अध्याय में देखा है। कामयेषु क्रोधयेषु रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम यवैरिणाम। तो काम से, काम क्या है, रजोगुण से उत्पन्न हो जाता है। तो काम असंतुष्ट हो गया तो क्रोध में परिवर्तित होता है, वो तमोगुण का लक्षण है। वो तमोगुण का लक्षण मतलब हम लोगों ने देखा चौथे अध्याय में कि उसका फल क्या होता है, हम लोग नीचे की ओर जाते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, क्रोध नहीं करना चाहिए। और अपैषणम का अर्थ है दूसरों का दोष निकाले और व्यर्थ ही उन्हें सही ना करे। तो कभी कभी लोग, हम लोग कृष्ण वाणामृत में भी देखते हैं, वो नियमों को बताने में या कुछ दूसरों को उपदेश देने में क्या हो जाता है उसमें दे बिकम कंडीशन, बद्ध हो जाते हैं वो, इतना बद्ध हो जाते हैं कि हम किसी एक बात बता रहे थे कोई अन्य भक्त के बारे में, ये एक मिनट में 500 नियम बता देंगे वो आपका तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवे यहाँ पर पापा जी कह रहे हैं जो चोर है उनको चोर कहने में कोई गलती नहीं है, सब सच बात है तो ठीक ठीक बात है तो वो बता सकते हैं ना। और उसके बाद अचापलम, अचापलम मतलब डिटर्मिनेशन, संकल्प का, तो किसी प्रयास में विचलित या उदास न होना, तो ये भौतिक जगत का लक्षण है, हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कभी यशस्वी नहीं हो सकते हैं, तो उसमें उदास नहीं होना चाहिए, अपने दृढ़ता से तो करते रहना चाहिए, ठीक है। धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करनी चाहिए, तो ये अचापलम। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को किसको लागू होता है वो बताया नहीं, इसका अर्थ है वो सबके लिए है, ठीक है। तेज शब्द क्षत्रिय के लिए निमित्त है, उनको बलशाली होना चाहिए, तो क्षत्रिय होने के लिए शारीरिक बल का बहुत महत्वपूर्ण होता है, है ना, तो दूसरों को रक्षा करना चाहिए उनको, है ना। आजकल के क्षत्रिय कैसे होता है, राजा कैसे होते हैं, सरकार आधा जो सेना है पहले उनको ही रक्षा करने के लिए चाहिए होता है ना, है ना। वो जो जो मासूम जो सेना सैनिक होते हैं वो लोग युद्ध करने में जाते हैं और ये लोग राजा लोग सेफ चेंबर में बैठा रहता है ना। तो ये क्षत्रियों को ऐसे हिंसक होना पड़ता है रक्षा करने के लिए। तो शत्रुओं को दमन कर सकते हैं हिंसा उपयोग करके, वो शत्रुओं को उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे। जब क्षत्रिय को कोई शरणागत आ जाते हैं तो उनको क्षमा भी कर देते हैं। जैसे परीक्षित महाराज जब वो कली को देखा, वो कली पुरुष को देखा, उन्होंने गायों को हत्या करते हुए उनको मारते हुए, तो तुरंत ही वो लोग क्या, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी तलवार निकाल दिया उन्होंने उसको मारने के लिए, लेकिन फिर उसने वो शरण में आ गए तो फिर उनको माफ कर दिया। शौचम का अर्थ है पवित्रता, तो सिर्फ ये मन और शरीर की नहीं हो, यहाँ पर शौचम का अर्थ है कि हमारे जो व्यवसाय में स्वच्छता होना चाहिए, स्वच्छंद होना चाहिए, यहाँ पर बोल रहे विशेष करके वैश्यों के लिए काला बाजारी बोल रहे ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, है ना। आजकल ऐसे बहुत पूरा समाज में है ना ब्लैक मार्केटिंग बहुत चलता है ना, ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग, सब लोग इसमें लगे हुए हैं, वो पूरा बैंक का अर्थ ही है ब्लैक मार्केटिंग है बस, और कुछ नहीं है। बैंक क्या करता है, वो छापता नोट, छापता जाता है छोट नोट, छापता जाता है, छापता जाता छापता, उसके लिए कुछ नियम नहीं है, वो छपते रहेंगे छपते रहेंगे छपते रहेंगे, है ना। तो ये सब ऑटोमेटिकली क्या है, ऐसा ब्लैक मार्केटिंग हो जाता है। सो नाति मानित, तो ये किसके लिए है, शूद्रों के लिए है, तो उनकी मान की भावना नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपने धर्म कैसे पालन, ऊंचे वर्गों का कैसे सेवा कर सकते हैं, तो प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए होता है। उन्हें व्यथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा से बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विविध वर्णों का सम्मान करे। ये 26 गुण है, दिव्य गुण है। कोई कोई छूट गया, क्या है वो? हाँ छूट गए वो। विगर फोर्टिट्यूड है ना, क्षमा कर देना चाहिए। शौचम या यहाँ पर ही का अर्थ है कि मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो और कोई गर्हित कार्य ना करे। तो लज्जाशील हो, बेशरम नहीं होना चाहिए उसका अर्थ हाँ व्यक्ति को बेशरम नहीं होना चाहिए। तो भक्ति में भी क्या है, वो पाप करेगा, वो ईसाई धर्म के वालों धर्म वालों को प्रभुपाद जी करते हैं, वो लोग बेशर्म लोग हैं, क्या करते हैं पाप करेंगे फिर गिरजाघर में ईसा मसीह के सामने माफ़ी मांगेंगे फिर जाके पाप करेंगे। तो ये बेशर्मता है, गर्हित कार्य करो है ना, तो निर्लज नहीं होना चाहिए, तो वो अर्थ है। तो अभी सभी हो गए ना, तो वो भी सबके लिए है। और उसके बाद अगला श्लोक, दम्भो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरिम्। हे प्रतापुत्र, दम्भ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा ज्ञान ये असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो दम्भ दर्प क्रोध और पारुष्य, प्रभुपाद बोलते हैं ये सब नरक के द्वार है, नरक का राजमार्ग बोल रहे, रॉयल रोड टू हेल। तो ये सब रॉयल रोड टू हेल इज डिस्क्राइब्ड। दम्भ, दम्भ का अर्थ है, हम लोग इसको पहले चर्चा कर चुके थे ना, कहाँ पर चर्चा कर चुके थे दम्भ का अर्थ कैसे?
या
क्या है वो, अमानित्व अदम्बित्व, तो ज्ञान के लक्षण वो चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो दम्भ का अर्थ होता है धर्म को पालन करना लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, है ना। वहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या वर्णन किया है कि लोग ये देखते नहीं कि ये सही धर्म है या नहीं धर्म है, सिर्फ वो क्या करना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं, कोई धर्म से जुड़ जाना चाहते हैं, तो उसको दम्भ कहते हैं। कलयुग में विशेष करके ऐसे बहुत दिखाया जाता है, कलयुग दम्भ का युग है। दर्प एरोगेंस, अपने आप को और प्राउड, प्राउड क्या है, अभिमान, अरोगेंस और प्राउड, हमारे अंदर बहुत सारा चीज है, वस्तुएं हैं, बहुत सारा संपत्ति है, बहुत सारा शिक्षण है, उसके कारण वो व्यक्ति अरोगेंट हो जाता है। हम लोग देखते हैं ना आधुनिक समाज में लोग उनका MA BA PhD व्हाटएवर, उसके कारण क्या हो जाता है, बहुत ही उनको दर्प और अभिमान हो जाता है। तो और उसके बाद वो बोलते हैं तो अभिमान मतलब दूसरों से पूजा मान सम्मान की आशा करना, तो अमानित्व नहीं होना, वो अभिमान है। और उसके बाद में क्रोध, वो इतना क्रोधी हो जाते हैं, छोटे छोटे चीज़ों से वो झगड़ा करना शुरू कर देते, और क्रोध के कारण क्या है, पारुष्यम, ऐसे कठोर वचन भी वो उपयोग करते हैं। तो विशेष करके यहाँ पर ये सब चीज़ क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, वो कोई अधिकारी को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे बोलते हैं, वे यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते रहते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये असुरी गुण के तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ से गर्भ में होते हैं। और जो जो वे बढ़ते हैं त्यों त्यों जो अशुभ गुण प्रकट होते हैं। पार्थ संपदम असुरे चा अभिजातस्य जन्म से, मतलब वो अपने माता के गर्भ में जब रहते हैं तब से वो ऐसे होते हैं छा अभिजातस। तो यहाँ पर कोई अधिकारी को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए वो पता नहीं रहता है। इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि वो शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं इसके कारण उनको ये पता नहीं। प्रमुख अंतर क्या है? जो दैवी और असुरी गुण में प्रमुख अंतर क्या है? वो वेद शास्त्रों को नहीं मानना। जो दैवी संपत्ति वाले वेद शास्त्रों को मानते हैं, और उनका सभ्यता कैसे होता है? वेद शास्त्रों के आधार पर होता है। तो वेद शास्त्रों के आधार पर हमारा सभ्यता नहीं रहता है तो वो असुरी सभ्यता है। बस यही प्रमुख अंतर है ये दैवी और असुरी संपदा के बीच, दैवी और असुरी स्वभाव के बीच में यही प्रमुख अंतर है। तो ये एक ये हो गया ना, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद में दैवी संपद संपद विमोक्षाय निबध्नात् माशुच संपदा दैवीं अभिजातोसि पांडवा। दिव्य गुणों गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और असुरी गुण बंधन के लिए, बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडव पुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, ऐसे कहते हैं। तो पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया था नरक का राजमार्ग, और यहाँ पर उसके दोनों के बारे में बता रहे हैं कि दैवी संपदा मोक्ष आया तो मोक्ष प्राप्त करता है, और निबंधाया आसुरी आसुरी मता, और जो असुरी संपदा है वो बंध जा, इस भौतिक भाव बंधन से हमें बंध जाते हैं। मा शुचा संपदा संपदम दैवी अभिजातो सी पांडवा, आप चिंता मत करो, ऐसे बोल रहे अर्जुन को, तुम चिंता मत करो क्योंकि आप दैवी गुणों से युक्त होकर जन्म लिए हो। क्योंकि वो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए थे और विशेष करके वो धर्म का पालन करते थे। आप जानते हैं ना, पांडव धर्म को पालन करने में बहुत ही दृढ़ थे। उनके बड़े भाई कौन है? धर्मराज है। तो तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में क्या रहे कि भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे थे, उनको प्रेरणा देना चाहते थे कि आप जो इस युद्ध में लगे हुए हैं वो असुरी नहीं है, वो डिमोनिक नहीं है, वो ऐसे असुरी कार्य नहीं है, वो दैवी संपुद्धि है। इसके लिए आप हिचकिचा ये मत, ऐसे उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये बता रहे थे। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह असुरी गुणों के साथ नहीं जन्मे हैं, युद्ध में उसका सम्मिलित होना असुरी नहीं है क्योंकि वह उसके गुण दोष पर विचार कर रहा था, है ना, गुण दोष पर। तो ये विशेष गुण होता है जो दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति ये करना ठीक है नहीं है उसके बारे में बहुत चिंतन करते हैं। तो आजकल समाज क्या है, जस्ट डू इट, ऐसे ही कर दो, ऐसे होता है, ये सब असुरी है सब, हाँ जस्ट डू इट करो, वो ऐसे ऐसे करके कैंसर हो जाता है, एड्स हो जाता है, सब करते हैं। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किए जाए या नहीं। अतः वह यह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतः वह वस्त्री स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना असुरी है। उसका अर्थ क्या हो जाता है, वो अपने कर्तव्य है, वेदों में उनको जो धर्म दिया गया है उसको छोड़कर वो क्या कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, उसको असुरी कहा जाता है। आता है अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है ना। सबको ऐसे हमें हम लोगों को ऐसे पालन करना चाहिए, वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसे प्रचार करना चाहिए, ऐसे उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, जैसे भगवान अर्जुन को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो तभी समाज क्या होगा, दैवी समाज होगा, नहीं तो सब असुर लोग होंगे, एक दूसरे को कैसे चूसना चाहिए वो चूसते रहेंगे, ऐसे जैसे आधुनिक समाज में सब लोग बहुत सभ्य दिखते हैं बाहर से सूट पूट बन के, है ना, लेकिन क्या करते रहते हैं, सब एक दूसरे का चूस रहे हैं ना। स्कूल, अस्पताल, न्यायालय, क्या भी जो भी है ना, इतने सारे बिल 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 सबके लिए बिल, पानी और पानी भी खरीदना आजकल इतना, सबको चूसना 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 चूसना, तो ये सब असली स्वभाव समाज है ना। तो ये राक्षस का गुण होता है, वो राक्षस क्या है, दूसरों को रक्त चूसते रहते हैं तो है ना, हम बता रहे थे ना आरंभ में, जरूरी नहीं कि उसका राक्षस या असुर का 10 सर हो या सिंह हो, ऐसे जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकते हैं। तो उसके बाद दो भूत सर्ग लोकेस्मिन् दैव असुरैव च दैवो विस्तरश प्रोक्ता आसुरं पातमेशुनो। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा असुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण का बतला चुका हूँ, अब मुझसे असुरी गुणों के विषय में सुनो। तो सृष्टि के आरंभ से ये दोनों क्या है, जीव है। वो विष्णु पुराण में है ना, वो बता, विष्णु पुराण में बताया गया है ना, क्या बताया गया बताओ, टेल द वर्स। विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुरस्तद विपर्ययः। तो जो विष्णु भक्त है वो दैव है, असुर कौन होते हैं, उसके विपर्यय है। या यहाँ पर थोड़ा और उसके तो डाउन टू अर्थ चर्चा हो रहा है कि जो वेदों को पालन करते हैं, या दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम, वेद का पालन करना मतलब वर्णाश्रम का पालन, वेदों में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन आता है ना, तो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं वो दैव है और वर्णाश्रम धर्म को पालन नहीं करते वो असुर है ना। तो हम लोग भी उसको वर्णाश्रम धर्म को हम लोग पालन नहीं करेंगे, हमारे संस्था में भी वो असुरी समाज हो जाएगा। तो आजकल इसके बारे में ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है आजकल, तो सब वो पहले हम लोग पढ़ रहे थे ना, मनगणित ढंग से है ना, कुछ भी सोचो सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऐसे चल रहा है आजकल, एवरीथिंग इज ओके ऐसे चल रहा है। जैसे पहले हम लोग तपस्या के बारे में चर्चा कर रहे थे ना, एवरीथिंग इज ओके ऐसे चल रहा है आजकल, तो ऐसे नहीं होना चाहिए समाज में। तो द्वा भूत सर्ग लोकस्मिन् दैव असुर एव च दैव विस्तरश प्रोक्तो आसुरं पातमेशुनो। तो दूसरे शब्दों में इन दोनों विष्णु पुराण के और इस श्लोक को दोनों को लेखेंगे तो जो विष्णु भक्त होते हैं वो हमेशा वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, दूसरे शब्दों में हम कहना चाहेंगे तो क्यों वो भगवान ने बनाए हुआ उससे व्यवस्था है। भगवान स्वयं बताते हैं, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विद्यकारम अकर्तारम। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे सामाजिक व्यवस्थाएं हो सकते हैं। आजकल सोशियोलॉजिस्ट है, तो सोशियोलॉजिस्ट वो समाज के स्थितियों को चर्चा करते हैं या सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो शायद हो सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च और परिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है जो भगवान कृष्ण ने बनाया, वो वर्णाश्रम है। तो इसलिए जो भगवान कृष्ण के जो भक्त है, विष्णु भक्त है, उसको पहले उनको आतुरता होना चाहिए, उनको ज़्यादा उसको पालन करने के लिए आसक्ति होना चाहिए। नहीं तो अपने आप को कैसे हम लोग कृष्ण भक्त कह सकते हैं। एक तरफ उन्होंने जो व्यवस्था बनाया उसको नकारते हैं और दूसरी ओर कृष्ण भक्ति का क्या है प्रदर्शन करते हो, वो कैसे भक्ति हो सकता है, कृष्ण भक्त हो सकते है। वो सब दिखावा है। इसके कारण वर्णाश्रम नहीं है तो भक्ति में क्या हो जाएगा, एक दम्भाचार दम्भ होगा। वर्णाश्रम नहीं है तो क्या होगा, दम्भ होगा। अभी हम ऐसे उस समय एक बार हम उदाहरण दे रहे थे, अभी आप ऐसे हम लोग चर्चा के लिए हम लोग उदाहरण के लिए ले रहे हैं। आपने ब्राह्मण दीक्षा लिया, ब्राह्मण दीक्षा लेके जाके बाहर जाके एक जॉब ले लिया, तो क्या हो गया, वो दम्भ है। आप ब्राह्मण थ्रेड दिखा रहे हो और ब्राह्मण बता रहे हो और कैसे ये स्ववृत्ति कुत्ते का वृत्ति पालन कर रहे हो, तो वो होता नहीं है। ये इसको वर्णाश्रम नहीं है तो क्या हो जाता है, दम्भाचार फैल जाता है सब जगह, भक्तों के समाज में दम्भाचार फैल जाता है। सब दिखावा जो है वो दम्भ क्या है, वो एक असुरी गुण है ना। यहाँ पर दम्भो दर्पो भी मानस क्रोध पारुषमा, तो इसलिए दम्भ हमारे संस्था में हम लोग वो जो जन्मजात जो ब्राह्मण है उनको निंदा करते हैं हम लोग। वो जन्म से वो लोग कोई गुण या कर्म नहीं होता है उनका, ब्राह्मण का कोई गुण और कर्म नहीं होता है, उनको हम लोग निंदा करते हैं। तो अभी बाद में हमारा निंदा करेंगे लोग, है कि नहीं। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर छठे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अब तक मैंने क्या किया, दैव विस्तरश प्रोक्ता आसुरम पार्थमेश सुनो, अब तक मैं दैवी गुणों का वर्णन किया, अभी क्या कीजिए आप, असुरों का मैं वर्णन करूंगा। फिर इसके पहले भी वर्णन किया ना चौथे श्लोक में असुरी गुणों का, वो ऐसा प्रश्न होता है ना। हम लोगों ने भी यहाँ पर क्या किया, पहले श्लोक से छठा श्लोक तक दैवी स्वभाव तथा उनके गुण बताया, बताया गया। क्या अर्थ है इसके लिए समझ में आ गया। हमने भी ऐसे विभाग बनाया और भगवान भी यहाँ पर बन रहा है, अब तक मैंने क्या बताया, दैवी स्वभाव को बताया। क्या इसका अर्थ क्या है, तो ये गलत है या भगवान जो बोल रहे वो गलत है। यहाँ पर चौथे श्लोक में वो इसलिए सिर्फ, पांचवें श्लोक में क्या आता है, अर्जुन को बता रहे भगवान कि आप दैवी जो स्वभाव से जन्म लिए हो, ऐसे कहते हैं दैवी स्वभाव से, उसको समझाने के लिए वो क्या कहते हैं चौथे श्लोक में, थोड़ा ऐसे एक संक्षेप में वो ऐसे टच करते हैं उसको। इसलिए वास्तव में वो वर्णन नहीं कर किया अभी तक, जो वो कहना चाहते थे कि ऐसे जो असुरी क्रोध है उसके आधार पर आपका युद्ध करना उसके आधार पर नहीं है, ऐसे भगवान उनको कहना चाहते थे। इसलिए वो ये चौथे श्लोक में दम्भो दर्पो विमानस्य क्रोध पारुषमेव च, ऐसे असुरी गुण का उन्होंने वर्णन किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे कृपा अर्जुन को यह कहकर कर दिए कि वह दैवी गुण से संपन्न होकर जन्मा है भगवान कृष्ण, अब उसे असुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए, जो दिव्य गुण दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्र विहित विद्वानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है करता रहता है वह असुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति अज्ञ भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना है कि यश एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। वैदिक आदेशों को मानना यही प्रमुख अंतर है, जैसे हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके बाद प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनानां विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो असरी है वे नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो जैसे पिछले तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद बोलते हैं वैदिक आदेशों को नहीं पालन करते, इसके कारण उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो पता नहीं रहता है। न विदुरासुरः, ऐसे वो मनगणित ढंग से ऐसे बहुत भौतिक कार्यों में लगे या पापमय कार्यों में लगे रहते हैं। न शौचम ना पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, उनमें कोई स्वच्छता नहीं रहता है। तो इसके बारे में भी बार बार चर्चा हो चुका है कि अंदरूनी स्वच्छता बाहरी स्वच्छता दोनों नहीं रहता है इनके बारे में इनके साथ। बाहर की स्वच्छता हम लोग स्नान करके होता है और अंदरूनी मन का शुद्धिकरण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करने से होता है। और ना पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, कोई उनका आचरण ठीक नहीं रहता है। तो आचरण ठीक नहीं रहता कैसे आचरण, मनुष्य समाज के लिए क्या आचरण होना चाहिए वो मनुसंहिता नामक ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है। तो सार रूप में भगवद गीता में सब कुछ वर्णन किया गया है। तो है ना, भगवद गीता भी धर्म ग्रंथ है, वहाँ पर जो भी आचरण करना चाहिए वो बताया गया है। तो सामान्यतः वैदिक समाज में मनुसंहिता को स्वीकार किया जाता था। सो लीगैलिटीज ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो सब उसमें बताए गए। तो संपत्ति किसको जाएगा कैसे जाएगा वो सब इसमें वर्णन किया गया। पहले जमाने में हम लोग पहले श्लोक के तात्पर्य में चर्चा कर रहे थे। जो संपत्ति है वो बड़े पुत्र को जाता है और वो क्या करते हैं, वो उनका धर्म क्या होता है, दूसरों को वो देखभाल करना उनका, हाँ, और अन्य उनको सहायता करते हैं। तो ऐसे एक बहुत ही सामूहिक परिवार, बहुत ही मतलब एक दृष्टिकोण से सुखी परिवार या जीवन बिताते थे लोग और शांतिपूर्वक जीवन बिताते थे एक दूसरे को सहायता करते हुए। लेकिन हमारे देश में विशेष करके भारत देश में महान भारत, मेरा भारत महान, एक पूतना हुई श्रीमती इंदिरा गांधी, तो उसने क्या कर दिया उसको बहुत अच्छा उसको क्या है, हम मनुसंहिता से भी ज़्यादा क्या है, अच्छा हमारे पास अच्छा विचार है, ऐसे उन्होंने क्या कर दिया तो नियम को बदल दिया। तो सबके लिए समान क्या होगा, बंटवारा होगा और स्त्रियों के लिए भी संपत्ति मिलेगा, ऐसे बंटवारा का नियम बना दिया उन्होंने। उसके कारण क्या हो गया, तो इतने सारे झगड़े, इतने सारे मारपीट, खून खराबा। आज भी जो न्यायालय में सबसे ज़्यादा ये क्या समस्याएं क्या होते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स के, है ना। ये पूतना असुरी स्वभाव के पूतना के कारण हो गया है ना। और इसका ही नहीं, इसके ऊपर बहुत समाज के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, वो एग्रीकल्चर है ना, कृषि के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ा है इसको, इसके बारे में तो वो सभी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। बटने के कारण कोई अपने जीविक पूर्ति जितना चाहिए वो पूरा नहीं कर सकते हैं एक व्यक्ति, तो इसके कारण फिर वो फैक्ट्री में काम करने के लिए जाने लगे। तो ऐसे बहुत समाज के ऊपर बहुत समाज, जब भी हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर शास्त्र से भी बढ़कर बहुत अच्छा विचार है तो वो सब नरकीय विचार है बस, या असुरी विचार। और यहाँ पर एक और उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद भर्ताव आचार के बारे में, स्त्री का आचार। अभी स्त्री का आचार क्या है, तो आजकल लोग सोचते हैं कि स्त्री को भी समान अधिकार होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। समान अधिकार मतलब सभी को समान, भगवान की व्यवस्था में वर्णाश्रम में सभी को समान, उनके स्थिति के अनुसार जो स्वभाव और उनके स्थिति गुण के अनुसार, उनके स्वभाव और स्थिति के अनुसार सबको अधिकार ये आ जाता था। तो सबको ऐसे सही उनको अधिकार दिया जाता था, उनको सबको देखभाल किया जाता था। तो और सभी वर्गों में या सभी लोगों में एक ऐसे कोऑपरेशन मतलब सहयोग का, सहयोग तक है भावना था, तो ऐसे समाज चल रहा था। लेकिन आजकल ये इसके लिए है कि लोग सोचते हैं कि हम समान अधिकार दे रहे हैं, तो ये विशेष करके इसके लिए है क्योंकि आजकल जो कारखानों का जो सभ्यता बनाया है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसके लिए बहुत सारा वर्कफोर्स चाहिए होता है, मेहनत करने के लिए बहुत बहुत सारे लोगों का जरूरत होता है, इसलिए वो लोग स्त्रियों को भी ऐसे बढ़ावा देते हैं, आप भी काम कर सकते हैं, आप भी। बाहरी तौर पर क्या बताते हैं, ये समान अधिकार है और क्या है ह्यूमन राइट, मानवीय अधिकार है, ऐसे अलग अलग नाम बताकर उनको क्या किया जाता है, उनको काम करने के लिए लगाया जाता है, उनको भी विश्वविद्यालय में जाना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए और क्या करना चाहते हैं और काम करना चाहिए, करियर होना चाहिए। हम तो बालकों के लिए भी विश्वविद्यालय जाने के लिए मना कर रहे हैं, स्त्रियों को तो दूर की बात है कि नहीं, हम ये चाहते बालक लोग भी नहीं जाना चाहिए ऐसे विश्वविद्यालय, स्त्रियों की दूर की बात। और ये स्त्री भी मूर्ख स्त्री क्या सोचती है, ओ ये बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा ऑफर है करके ऐसे सोचते हैं, वो घर में एक पुरुष को सेवा करने के बजाय वो बाहर जाके 30 पुरुषों का सेवा करती है, वो मूर्खता है वो स्त्री का, है ना। और पति पत्नी सब दोनों जाके काम करते हैं किसके लिए, वो पत्नी घर में रह के वो कपड़ा और बर्तन धो सकती है, वही कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए जाके बाहर जाके मेहनत करके वॉशिंग मशीन करके खरीद करके वो लेकर आते हैं, है ना, ये इसके लिए काम करते हैं, है ना। तो ये सब तो कुछ बुद्धिमान का लक्षण नहीं है, बुद्धि का लक्षण है, इट्स नॉट अ रैशनल सोसाइटी। तो इसके कारण जैसे पहले हम अध्याय में देखते हैं, जब स्त्री पुरुष साथ में आ जाते हैं तो वो मक्खन और अग्नि के समान है, तो इसलिए स्त्रियों का अत्याचार होता है, दूषित हो जाएंगे। और ऐसे स्त्री के गर्भ से जब जन्म लेते हैं बच्चे, वो क्या है वर्ण संकर हो जाते हैं, तो वो असुरी समाज बन जाता है उसके कारण। तो यहाँ पर प्रॉपर वो कह रहे आजकल क्या है, कल्पना ही है बोलते हैं। तो उचित सामाजिक आचरण, लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी के जीवन का एक अंत अतिरंजित अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। पॉप द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमनली लाइफ अंग्रेजी में ऐसा लिखते हैं, क्योंकि वो स्त्री क्या होते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं, पढ़ाई करती है और इतने सारे पुरुषों से मिलती जुलती है, तो वो कभी भी पति से वो क्या रहती है, पति के साथ उनका विनम्रता का बर्ताव नहीं होता है। पपड़प कॉन्सेप्ट मतलब अति रंजित क्या है, अहंकार पूर्ण बर्ताव होता है। तो क्योंकि वो सोचती है ये क्या है, कितने सारे पुरुषों को वो मैं एक पुरुष है ऐसे सोचिए, है ना। और थोड़ा झगड़ा हो गया, तुम डिवोर्स विवाह विच्छेदन, तुम क्या दुनिया में कितने सारे पुरुष है ना। हम बहुत पहले पहले जमाने में कैसे होता है, उनको आरंभ में ऐसे प्रशिक्षण देता और उनको कभी सभ्य समाज में या सभ्य परिवारों में, प्रभुपाद जी कहते हैं अभी 25 साल पहले जब प्रभुपाद जी थे तब समय भी 40 साल पहले क्या था, सभ्य परिवारों में कोई स्त्रियों को बाहर नहीं भेजते थे। विश्वविद्यालय में जाना, हॉस्टल में रहना, ये सब करना वो अलग बात है, बाहर भी नहीं भेजते थे। तो इसलिए उनको पहले से ही ऐसे सतीत्व का साध्वी भावना, कैसे अपने पुरुष के प्रति श्रद्धा रहना चाहिए उनको, तो वो सब सिखाया जाता था। तो ऐसे उनको आरंभ से और जल्दी उनको विवाह किया जाता था। तो ऐसे जब स्त्रियां बढ़ती है तो वो सभ्य होती है। तो ये अभी क्या है, पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑफ वुमन लीला, उसके कारण क्या हो गया, वो कभी वो विनम्र नहीं रहती है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत ही अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। ये सब किसके कारण है, ऐसा परिवार आजकल परिवार ठीक तरह से नहीं चल रहा है, किसके कारण है, आधुनिक शिक्षण के कारण। स्त्रियों को भी शिक्षण होना चाहिए ऐसे वो लोगों ने प्रचार कर दिया है, तो उसके कारण क्या है, परिवार कभी भी ठीक तरह से नहीं चलने वाला। तो आधुनिक शिक्षा ने नारी के जीवन को एक अतिरंजित अहंकार पूर्व बोध उत्पन्न कर दिया है, अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री को नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई, नैतिक स्थिति अभी वो सिर्फ क्या है, वो लोग एक बार हम बहुत पहले कृष्ण भावनामृत आने से पहले ही हम लोग एक पढ़े थे, वो एक वो सिनेमा प्रोड्यूसर या कुछ थी एक माता जी, उसने एक 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 लेख लिखा था उन्होंने, एंड ऑफ वर्जिनिटी ऐसे लिखा था। ऐसे नैतिक स्थिति का क्या है, अंत है ऐसे वो। तो क्या होता है, वो विश्वविद्यालय मतलब क्या है, स्त्री पुरुष का मिलने का स्थान है बस, है ना। पहले जमाने में उसको वैश्यालय कहते थे, आजकल विद्यालय कहते हैं इसको, है कि नहीं, बड़ा बड़ा नाम देते बस, है ना, उसके लिए व्यवस्था है ना वो सब, को एजुकेशन बोलते हैं उसको, कहाँ पर एजुकेशन है। तो एक दूसरे को कैसे आकर्षित करना चाहिए वो प्रशिक्षण दिया जाता है। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, क्योंकि ये महर्षियों की अनुभूति अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव असुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि महर्षि मनु महर्षियों का जैसे महर्षियों का अनुभवों को वो पालन नहीं करते हैं, तो उसके कारण क्या हो गया, असुरी लोगों का सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है ना। वो इतना कष्ट होता है, विवाह विच्छेदन करते हैं लोग, है ना, और उसको पत्नी को वो पैसा देना पड़ता है, ऐसे बहुत बार 2-3 बार हो गया तो जीवन भर उनके लिए वो मेहनत करता है और वो देश को छोड़ के भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो अभी बंद गया है, नियम लॉ से वहाँ पर ऐसे होता है, सब नियम होते हैं। हाँ वो भी है ना, आजकल ऐसा नियम बना रहा है असुर लोग, हाँ है ना, कि आप विवाह किए बिना मिल के रह सकते हैं, ये सब असुर है, असुर एक नंबर के असुर लोग, है ना। पूरा सत्यानाश करके रख दिया। इसीलिए ब्रह्मचार्य आश्रम में आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ना। ठीक है, कुछ प्रश्न लेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना कैसे आधुनिक समाज का डिक्टो, उसका स्थिति को यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं भगवद्गीता में, कैसे वो असुरी समाज है। हाँ ठीक है, कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी? इसलिए हम लोग गुरुकुल खोल रहे हैं आरंभ से उनको प्रशिक्षण देने के लिए, और इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि स्त्रियों को बाहर मत भेजिए करके। तो ये सब करना चाहिए, जोर से प्रचार करना चाहिए, अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए, है कि नहीं? तब समाज ठीक हो जाए। ये ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको स्वाध्याय करना चाहिए रोज। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब स्वाध्याय करना चाहिए, ठीक है?
कैसे रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा है जैसे अवैध इच्छाएं खाने में छूट, जैसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लेकिन अभी जो हमारी स्थिति है, हम लोग कोई 20 साल कोई 25 साल के बाद यहाँ कृष्ण भक्ति में आए हैं, हमारी जो बैकग्राउंड है, जो पूर्व जीवन है, तो इतना अच्छा नहीं था। तो इसके वजह से जैसे कोई सपना भी आता है तो उससे भी पूरा दिन भर वो जो विचार है जो आते हैं, तो इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं?
कुछ नहीं, जो कर रहे हैं वो करते रहना चाहिए और सहन करना चाहिए और करते रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी भी सन्यासियों को, क्योंकि कलयुग में ये सब मुश्किल है, सन्यासियों को भी उन्होंने छूट दिया। उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि सन्यास करके ये करना चाहिए, पालन नहीं रहो रहा था सब जो भक्त बन के रहो करके बोल रहे, ठीक है।
उन्होंने बोला कुछ करते
शायद इसमें दो तीन कथाएं मिक्स हो गए। एक बार ऑस्ट्रेलिया में थे प्रभुपाद, प्रभुपाद ने बोला वो वीर्य के बारे में, वीर्य को बना के रखने के बारे में बता रहे थे, तो कंजर्विंग सेवन, 25 साल तक इसको आप बना के रखेंगे तो आपका आध्यात्मिक जीवन में बहुत लाभ होगा, ऐसे बोलते। तब सबका सर नीचे हो गए, क्योंकि पाश्चात्य देश में क्या है, वो लोग सब हिप्पी लोग है ना। फिर उनको देखकर प्रभुपाद जी बोले फिर भी ठीक है, सब लोग हरे कृष्ण मंत्र को जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। और दूसरा स्टोरी है, कौन थे वो, शायद वो उमापति प्रभु या उपेंद्र प्रभु, वो कुछ समय के लिए बाहर गए थे, मतलब छोड़ दिया था, फिर वापिस आ गए। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने, वो रोते हुए प्रभुपाद जी के पाँव के ऊपर पड़ गए और प्रभुपाद जी आपने मुझे तिरस्कार कर दिया, ऐसे पूछा। फिर प्रभुपाद जी बोले मैं तिरस्कार आपको कैसे तिरस्कार कर सकता, आप सबकी मेरे लिए सहायता है, मैं चैतन्य महाप्रभु नहीं हूँ, जो उनके जैसे मैं भक्त बनाने के लिए मेरे अंदर शक्ति नहीं है, वो छोटा हरिदास को तिरस्कार किया, मैं वैसे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर उतना शक्ति नहीं भक्त बना के, आप सब लोगों का मुझे सहायता चाहिए। वो एक स्टोरी है, बहुत सारे स्टोरी।
ब्राह्मण जो होते हैं वो बाहर काम नहीं करते और जो वैष्णव के ब्राह्मण है वो प्रोसेस करते हैं बाहर के ब्राह्मण को भोजन के आधार पर है। जिनके आप जन्म के आधार पर ब्राह्मण है वो हमारे यहाँ लोग निंदा करते हैं ऐसा है। तो हम देखते हैं ऐसा कि वो लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम तो भक्त है हम तो ब्राह्मण ही और वैष्णव भी ऑलरेडी ब्राह्मण है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो काम करिए ना करें।
नहीं, वो हमारे आचार्य नहीं बोलते, प्रभुपाद बार बार वो जीव गोस्वामी को उल्लेख करते थे ना, ऐसे जो हो नाम जब को वो है ना, वो तीसरे स्कंद के 33वें श्लोक के 6 और 7वें श्लोक का पढ़े। 7वें श्लोक क्या है, अहोबत स्वपचितो गरियान। उसके पहले का श्लोक क्या है, पहले का श्लोक है स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते। वहाँ पर जो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं वो स्वपच के घर में जन्म लिया है, वो स्वपच है। वो स्वादो मतलब वो बोलते हैं इट इज इन प्रेजेंट टेंस, मतलब वो कुत्ते खाने का आदत है उसको, वो भी भगवान का नाम उच्चारण कर दिया तो तुरंत ही वो सवनाय कल्पते, वो यज्ञ करने के जैसे, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण जैसे उनके गुण प्रकट हो जाते हैं या उस स्थिति को प्राप्त करता है, ऐसा बोलते हैं। तो उसके तात्पर्य में जीव गोस्वामी कहते हैं, प्रभुपाद जी इसको उल्लेख किया करते थे वो प्रवचनों में वगैरह। वैसे व्यक्ति भी क्या करना चाहिए, वो जो प्रक्रिया है, वैसे शुद्ध हुए व्यक्ति भी जो प्रक्रिया है शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया, उसको पालन करना चाहिए। उसको भी संस्कार के द्वारा, दीक्षा संस्कार हो, दीक्षा संस्कार के द्वारा ही शुद्ध होना चाहिए, उसको दीक्षा संस्कार को पालन करना चाहिए, उस दूसरे शब्दों में आप। तो इसलिए वैष्णव समाज में, और ऐसे हम लोग कहेंगे हम लोग वैष्णव हैं तो वो क्या है, वर्णाश्रम के लिए वो क्या है, बहुत बाधा हो गया। मैं वैष्णव हूँ, कुछ भी करने के लिए वैष्णव के लिए, वैष्णव मतलब वो कुछ भी करता नहीं, वैष्णव मतलब प्रमुख चीज वो वेदों को पालन करता। वो पहले हमने इसलिए बताया, भक्त लोग हैं वो पहले भगवान के व्यवस्था को पालन करते हैं, बाद में दूसरे लोग, पहले भगवान के व्यवस्था कौन पालन करेंगे, भक्त लोग पालन करेंगे। ये वर्णाश्रम दूसरों के लिए नहीं है, भगवान भक्त पहले भक्त लोग पालन करेंगे और अपने उदाहरण से दूसरों को पालन करने के लिए सिखाएंगे। तो वो ऐसा कहना मैं वैष्णव हूँ, ब्राह्मण से भी परे हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप वैष्णव है तो वैष्णव रहे ना, क्यों थ्रेड लेने का, थ्रेड क्यों जरूरत है। वैसे ही भक्ति करके, हरे कृष्ण महामंत्र करके आप भगवतधाम जा सकते हैं, थ्रेड लेने की जरूरत नहीं है। थ्रेड इसलिए है कि हम लोग वैष्णव में भी एक ऐसा समाज को स्थापना करना चाहते हैं ताकि एक उदाहरण स्थापित हो दुनिया के लिए। जरूरत नहीं है थ्रेड लेने का, सभी को थ्रेड लेने की जरूरत नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र काफी है। तो इसके कारण, इसलिए आप ब्राह्मण का बर्ताव भी करना चाहिए, दिखाना मतलब क्या हो, सिर्फ ऐसे थ्रेड दिखाना है। या लेकिन वैष्णव बढ़कर कैसे होता है, वो उसका बर्ताव से होता है, नाट दिखावा से होता नहीं है, वो लॉजिक रॉन्ग लॉजिक इट इज। या बट इफ यू, आप कुछ भी कीजिए चलेगा, लेकिन थ्रेड मत लीजिए, थ्रेड लिया तो उसका बर्ताव करना चाहिए, तभी वो आप दिखा सकते हैं दूसरों के कि आप वैष्णव श्रेष्ठ है ना। कैसे दिखा सकते हैं उसको, आपने ऐसे परिवार में जन्म लिया फिर भी आपके अंदर ऐसे वैष्णव का गुण आए, आप ऐसा कर बर्ताव भी कर रहे हैं, तब उनको दूसरों को उदाहरण स्थापित कर, दूसरों को बता रहे हैं कि वैष्णव कैसे ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। कर ऐसा कुछ भी करके वैष्णव ब्राह्मण नहीं होते हैं, प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि, एक तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ, इसलिए उसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रशिक्षण नहीं लेना चाहिए,
ऐसा
इसको जाके समुद्र में डूब के डुबा के आ जाओ और क्या कर सकते हैं। एक नंबर का निकम में बोलेंगे, वैष्णव नहीं बोलेंगे उनको, निकम में बोलेंगे उनको। नहीं नहीं, वो तो यज्ञ शिष्टा सीना प्रसन्नता निश्चन थे सर वकील विषय। हाँ वो लोग शूद्र, उनको शूद्र लोग खाते थे उसको, शूद्र लोगों को बांट दिया जाता था। हाँ वो एक चीज है, बहुत सारे ब्राह्मण भी मांस खाते थे पहले जमाने में तो, लेकिन वो क्या है, वो नियमित क्योंकि वो नियम को पालन कर रहे हैं, इसके कारण जैसे बताया गया ना, जो शूद्र लोग मांस खाना चाहते हैं तो उसको खा, यू नो, गांव के बाहर जाना चाहिए और महीने में एक बार हुआ करता था ऐसे, और उसको अर्पण करके काली को और कुछ मंत्रों को उच्चारण करके वो खाते थे। उसके कारण क्या हो जाता था, मांस खाने से ही क्या नहीं होता है, शुद्धिकरण नहीं होता है, लेकिन वो नियमित कर रहे हैं उसको, मांस खाने की जो प्रक्रिया है उसको नियमित कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, उसका प्रगति होता है। वो तो रहेगा, इसलिए बताया गया ना, वो मंत्र भी है, अभी आप मुझे काट रहे हो, अगले जीवन में आप मुझे काटिए, वो पाप तो रहेगा, सबके लिए रहेगा, क्षत्रिय के लिए भी रहेगा पाप, इसलिए अंत में वो लोग त्याग करके, सब कुछ त्याग करके जाते थे। भागवत में है वो, फिर उसके बाद में क्या निष्कर्ष हुआ, लेकिन वो वर्णन आता है ना कि वो उन्होंने विश्व अश्वमेध यज्ञ किया करके, पता नहीं भागवत से, हाँ वो उसको हम लोग स्वीकार भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं ऐसा कुछ तो, लेकिन उसको गहराई में अध्ययन करना चाहिए वो विभाग। तो वैसे हुआ करता था, महाभारत में वर्णन आता है कि उन्होंने विश्व अश्वमेध यज्ञ किया उसको मुक्त होने के लिए, और विशेष करके यज्ञ में जब मृत्यु हो जाता था, यज्ञ में जो मृत्यु होता है उसको, उस पशु को मनुष्य शरीर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका प्रश्न में मिश्रण हो रहा है। तो जो यज्ञ में, ये भगवद गीता में यहाँ पर श्लोक उल्लेख कर रहे हैं ना, वो पहले श्लोक में हम पढ़ेंगे उसको, यज्ञ में जो आहुति दिया जाता है उसके लिए कोई पाप नहीं मिलता है, क्योंकि उनको एक ऊंचा शरीर प्रदान कर रहे हैं, और जो मांस खाने के लिए वो कुछ नियमित ऐसे मांस खाते हैं उनके लिए वो पाप होगा, उनके लिए उसको पाप को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर देखे, इट इज सेड टू काइंड्स ऑफ नेम, द क्षत्रिय हु डाइज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बैटल फील्ड। नहीं यहाँ पर नहीं होगा, दूसरे अध्याय में वो है ना, उल्लेख करते हैं धर्मशास्त्र से, उल्लेख करते हैं जो ब्राह्मण अग्नि में आहुति देता है और क्षत्रिय बाण युद्ध भूमि में, तो उनको ये नहीं होता है। यहाँ पर वो एक मनुष्य संहिता से श्लोक है, वो एक एक पराशर स्मृति से है। इन द बैटल फील्ड किंग और क्षत्रिय वाइल फाइटिंग अनदर किंग एनवियस ऑफ हिम इज एलिजिबल टू अचीव हेवनली प्लैनेट्स आफ्टर डेथ, एज द ब्राह्मण ऑल्सो अटेन्स द हेवनली प्लैनेट्स बाय सैक्रिफाइसिंग एनिमल इन सेक्रिफिशियल फायर। आपका क्या है प्रश्न? दो मिश्रित हो गया। जो निम्न दर्जे के लोग मांस खाते हैं वो काली को अर्पण करके, वो और ये जो यज्ञ दोनों मिश्रित हो गए। और यहाँ पर वो एनिमल सेक्रीफाइस भी है। कभी कभी या हमेशा, पता नहीं, याद है नहीं मुझे, वो आहुति इसलिए देते थे पशु को कि वो ब्राह्मण के जो मंत्र उच्चारण करने का जो शक्ति है उसको परीक्षा करने के लिए। तो वो पशु को, कभी कभी बूढ़े पशु को या बूढ़े गाय को भी आहुति देते थे, तो तुरंत ही उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता था। वो नहीं प्राप्त होता है तो वो क्या हो जाता है, वो ब्राह्मण योग्य नहीं है, या उसको पाप लगेगा, उसको यज्ञ करने से उसको निकाल देते हैं। उसकी शक्ति को परीक्षा करने के लिए ऐसे दिए जाते थे। तो ये नहीं तो यज्ञ नहीं होगा, कुछ वो कुछ और होगा। आजकल होता है ना, वो बक बक कुछ मंत्र बोलते रहते हैं, वो कि उसको भी पता नहीं रहता और पूजा का कुछ दिखावा करते हैं ऐसे, है ना, पुरोहित होते हैं आजकल। जरूरी नहीं है, लेकिन वो कर्मकांड विधि में है वो सब चीज, लेकिन यज्ञ करना जरूरी है। तो यज्ञ मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा आहुति देना या कोई पशु का हत्या करना, वही नहीं है यज्ञ। मतलब कर्म, हमारे नियत कर्म पालन करना। जो गृहस्थ होते हैं वो यज्ञ करते हैं। यहाँ पर अग्निहोत्र यज्ञ बताया गया ना गृहस्थों को। वो लोग हत्या करके खाने के लिए
वो
स्व मतलब कुत्ता, कुत्ता मतलब जनरली शूद्र को कुत्ते के वृत्ति मानते हैं उसको, वो क्योंकि दूसरों का सेवा करता है, वो मालिक का सेवा करते हैं, तो पैसा के लिए या ऐसे मालिक का सेवा करना वो स्व वृत्ति का है उसको। तो कभी भी ब्राह्मण को ऐसे स्ववृत्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे एक उपदेश ब्राह्मण में, ब्राह्मण को भागवत में जब वर्ण 7वें स्कंद में आता है, जब वर्णाश्रम का वर्णन आता है ना, युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ने सभी नियम बताया वर्णाश्रम का। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, वो शूद्र को नीचे दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के लिए वो ऐसा है। शूद्र के लिए वो ठीक है क्योंकि वो उसका धर्म है, स्वभाव है। ब्राह्मण जब ऐसे करते हैं तो वो कुत्ते बन जाते हैं बस। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।